हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। भागवतम के छठे स्कंद के सातवें अध्याय के 39वें श्लोक के हम आज इसकी चर्चा करेंगे। बोर्ड पर श्लोक लिखा है, तुम्हारे विषय बोलने का प्रयास कीजिए। सुदृशां श्रियं गुप्तां औशनस्य अपि विद्या आचिद्या अदा महाइंद्राय वैष्णव्या विद्या विभु। सुरदिशां श्रियां गुप्तां औशनयपि विद्या आचिदत्यमातो महेन्द्र वैष्णवया विद्या विभु। सुदृशां श्रेयां गुप्तां मोशनस्यपि विद्या आचिद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्य विद्या विभु। सुर्विदिशां श्रियं गुप्तां मोशनस्यपि विद्या आचिद्यानन्द महेन्द्राय वैष्णव्य विद्या विभु। सुर्द्विषां देवों के शत्रु, श्रेयं ऐश्वर्य, गुप्तां सुरक्षित, औशनस्य शुक्राचार्य की, अपि यद्यपि विद्या प्रतिभासे आचिद्या संग्रह करके अदा दिया है महाइंद्राय राजा इंद्र को, वैष्णव्या भगवान विष्णु की, विद्या प्रार्थना से विभु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप। अनुवाद इस प्रकार है, यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्यों को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्रोत्र की रचना की। इस बुद्धिमतापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। बात पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। देवों तथा असुरों का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं, जबकि असुर श्री शिव, देवी काली तथा देवी दुर्गा के भक्त हैं। कभी कभी असुर भी शिव ब्रह्मा के भक्त होते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण श्री शिव का तथा महिषासुर देवी दुर्गा का। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। विष्णु भक्तः स्मृतो देवा, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णवों के विरोधी होते हैं। आसुरदस्त दवी पर्याप्त, वैष्णवों के विरुद्ध हेतु असुरगण श्री शिव, श्री ब्रह्मा, काली, दुर्गा आदि के भक्त बन जाते हैं। पुराकाल में देवों तथा असुरों में शत्रुता थी, जो अब भी चल रही है, क्योंकि श्री शिव देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव से सदैव द्वेष रखते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव के भक्तों के बीच का यह तनाव सदा रहा है। स्वर्गलोक में असुरों तथा सुरों के बीच दीर्घ काल तक युद्ध चल रहा है। यहां हम देखते हैं कि विश्वरूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया, जो विष्णु मंत्र से पूरित था। कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णु ज्वर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिव ज्वर कहते हैं। हम शास्त्रों में असुरों तथा सुरों के बीच होने वाले युद्धों में शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत सुर दिशाम शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का है, जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म असुरों तथा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ। श्री भगवान अपने भक्तों को नित्य ही आशीर्वाद देते हैं, इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवद्गीता 9वें अध्याय के 31 श्लोक में करते हैं। कौन्तेह प्रति जाना ही नामे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मैं निर्भीकतापूर्ण घोषित करता हूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये जो अध्याय है, इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, इस अध्याय में हम सब लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं, इसमें जो विशेष जो सीख है हमारे लिए कि किस प्रकार इंद्र ने अपने ऐश्वर्य से मोहित होकर अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। अर्थात जब वो आए सभा में तो खड़े नहीं हुए, और जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि भागवतों में कई इस प्रकार की जगहों पर कथाओं में इस प्रकार के इंसिडेंट्स मिलते हैं, जब कोई गुरु या सीनियर पहुंचे और दूसरा व्यक्ति जो है अपने पद के अनुसार या अपनी अपने लेवल के अनुसार रिस्पेक्ट नहीं कर पाया किसी सीनियर का। तो यहां पर भी यही घटना घटी, और उन घटनाओं में भी यही होता है कि अपराध लगता है वैष्णव एटिकेट्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई व्यक्ति अपने सीनियर को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता तो रिस्पेक्ट का जो ये कल्चर है ये बहुत गहरा है, ये हर जगह पर अप्लाई होता है, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो वैष्णव हो, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है। हमें जो श्लोक सिखाया जाता है, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, अपने मान की इच्छा ना कर दूसरों को सदैव मान देने वाला होना चाहिए। भक्तों को इस प्रकार की चैतन्य महाप्रभु की जो है शिक्षा है कि अपने मान की इच्छा ना करें लेकिन दूसरों को सदा ही मान दें। तो ये शब्द जो दो हैं ये बहुत साधारण लग सकते हैं, ठीक है मुझे मान नहीं चाहिए, मैं दूसरों को मान दूंगा, जबकि जब इसको प्रैक्टिस करना व्यक्ति शुरू करेगा तब उसको अपने हृदय से इस श्लोक अपने हृदय में पूरी तरह क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, तब वो ऐसा कुछ काम कर सकता है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है कि कुछ दिन कर लिया उसके बाद नहीं हुआ, ऐसे ही होगा। शुरू में अगर कोई करना भी चाहेगा कि ठीक है मैं अपने मान की इच्छा ना करूं, ठीक है, लेकिन कितनी देर तक याद रखिएगा, जहां पर भी उसको जाना है या जो भी उसके साथ डीलिंग्स कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उसका अपमान होगा होगा, है ना। और कई लोग उसका अपमान करेंगे, कई कटु शब्द बोल सकते हैं, कोई उतना मान नहीं करेंगे जितना वो चाह रहा था, या कहीं पर ऐसी जगह हो जाएगी कोई जहां पर एकदम छोटा व्यक्ति उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं पर उसका बांध, संयम का बांध टूट जाएगा, और वहां पर उसको शब्द कुछ बोलने पड़ेंगे, या हाथ उठाना पड़ेगा, या गुस्सा होना पड़ेगा, श्राप देना पड़ेगा। तो और मान देने की भी स्थिति इतनी आसानी से नहीं आती कि मैं सबको मान दूं। सबको मान देने से पहले व्यक्ति की स्थिति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो हृदय से ये जानता हो कि वास्तव में सबके शरीर के भीतर परमात्मा स्थित हैं। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति सबको मान देना शुरू कर सकता है। शुरुआत में व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस या बाहरी एटिकेट्स के अकॉर्डिंगली तो नाम दे सकता है कि मुझे सीनियर्स हैं, वृद्ध हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे बताया गया शास्त्र में 5 लोगों को हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो वृद्ध हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं और जो भक्त लोग हैं या शारीरिक रूप से कोई, ठीक है, तो ऐसे लोगों को पूरी रिस्पेक्ट और पूरा सम्मान देना चाहिए। गायें भी शायद उसमें आती है 5 में। तो व्यक्ति को सदैव इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो जब व्यक्ति अगर इस प्रकार मान देने का प्रयास भी करता है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद ही व्यक्ति को मान देने की स्थिति जो है पता चल जाती है कि कितना मुश्किल है सबको मान देना, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो टेंडेंसी है, उसकी जो वृत्ति है, वो है दूसरों में दोष देखने की। वो हर जीवात्मा को, किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से मान नहीं दे सकता, क्योंकि जब उसको मान के फ्रेम में डालेगा तो अचानक उसका पूरा का पूरा चिट्ठा सामने आ जाता है। ये व्यक्ति, इसका नाम ये है, इसके पिता ये थे, वो तो फिर भी ठीक थे, ये ठीक नहीं है, और इसने ये किया था, इससे ये हुआ था, इसने ये गलतियां की हैं। तो इस प्रकार उस फ्रेम में बाद में जब कंक्लूजन देखता है तो कहता ही नहीं, ये तो इतना मान के लायक ही नहीं जितना मैं दे रहा हूं। और कभी इस प्रकार कोई बातचीत हो जाए तो व्यक्ति यही बोलता है कि जितना मैं मान दे रहा हूं ना, तुम उतने लायक भी नहीं हो, तो मेरा बढ़प्पन है कि मैं तुम्हें इतना मान दे रहा हूं। तो ये श्लोक जो है, मान और अपमान ही ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, तो इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए जब हम लोग वैष्णव परिवार में जब इसका अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं तो बड़ा सजग रहना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आ जाती हैं। और यहां पर जो बताया जा रहा है, ये युद्ध हुआ, इसका भी कारण क्या था कि इंद्र, जो कि अपने घमंड, अपने ऐश्वर्य के कारण अपने गुरु को आता देख उनके सामने तो भी खड़ा नहीं हुआ उनकी रेस्पेक्ट के लिए, तो क्या हुआ, उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ा, है ना। एक बार ऐसे हुआ था, प्रजापति भी गए थे सभा में, तो वहां पर ब्रह्मा जी और शिव जी, इन दो को छोड़कर बाकी सब लोगों ने अपनी सीट से खड़े हुए थे प्रजापति के। प्रजापति एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिव भी खड़े होंगे, क्योंकि मेरे दामाद हैं, मेरी लड़की यहां भी है, ये तो मेरे दामाद होने के कारण अपने ससुर को देखकर तो खड़ा होना चाहिए था इनको, लेकिन वो भूल गए कि बिहाई किससे है, शिव जी से, जो कि कोई साधारण जीव नहीं। तो उन्होंने इसको अपराध लिया, अपना मतलब अपमान फील किया उन्होंने काफी, और उसके बाद आगे की घटना आप जानते हैं। धीरे धीरे यज्ञ में उनको बुलाया नहीं और वहां पर तिरस्कार किया, और यज्ञ में नहीं बुलाया, पार्वती जी कहती रही कि सब लोग जा रहे हैं अपने अपनी वाइफ के साथ पार्टी में जा रहे हैं, मेरे पिताजी की यज्ञ है, मैं भी जाऊं, आप भी चलो, कहते मैं नहीं जा सकता क्योंकि आपके पिता की मेरी बनती नहीं है उस दिन की वजह से, कहते नहीं नहीं चलना चाहिए, अपने के घरों में तो बिना बताए भी जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, मैं तो बेटी हूं कि मेरी बहनें वहां पर हैं, मेरी मां है वहां। शिव जी ने कहा नहीं, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए जहां पर अपमान हो, बात ठीक है कि अपनों के घर में बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे घरों में नहीं जा सकते जहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद शिव जी ने कहा, जैसे हम लोग बोलते उस तरह नहीं बोला, कहा ठीक है जाना तो चाहिए, तो चली गई। फिर नंदी जो उनके पार्षद हैं उनको साथ भेजा कि लेके जाओ या कुछ साथ में और जाओ, भूत प्रेतों को भी साथ ले जाओ। तो वहां जाने पर क्या घटना घटी कि जब उन्होंने देखा सबको बुलाया है, सबके यज्ञ का भाग उनको दिया जा रहा है, उनके लिए रखा गया है, बट शिवजी की अनुपस्थिति है, उनके उनका भाग नहीं है वहां, तो उतना गुस्सा आया पार्वती को। उन्होंने कहा कि जो मेरे को देह जो मिली है ये इन्हीं प्रजापति की तरफ से मिली है। उनको बहुत क्रोध आया, उन्होंने कहा मैं क्या करूं इसमें, मैं तो ये शरीर जिन्होंने दिया मैं तो कहलाने लायक भी नहीं रही कि इनकी पुत्री हूं। तो उन्होंने जल्दी से समाधि लगाई और अपने को भस्म कर दिया, क्योंकि अब वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि शिवजी ने मना किया था पहले मत जाना, बहुत दिक्कत होगी ऐसी परिस्थिति में। तो बस के बाद फिर लड़ाई शुरू होगी, नंदी वगैरह ने उनको पिटाई शुरू करी, कर्ज देना शुरू किए, उधर से उनके भी वो आए, शिव जी भी आगे बाद में उन्होंने भी दिया, फिर ब्रह्मा जी, तो इस प्रकार करके बड़ा नुकसान हुआ लोगों का सबका। तो एक छोटी सी घटना थी, कहां से शुरू हुई थी ये, खड़े न होने की वजह से किसी ने अपराध ले लिया। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था, लेकिन अपराध मान लिया जाता है। कई बार अगर किसी ने हमसे, हमने कुछ किया भी नहीं है तो भी अगर कोई अपराध मान लेता है उसका भी नुकसान होता है। जैसे रूप गोस्वामी जी सुंदर लीलाओं के चिंतन में थे, लीला दर्शन कर रहे थे और लीला भी इतनी सुंदर थी कि कोई भी व्यक्ति हंस जाए कि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो है इनकी लीला थी कि राधा रानी वृक्ष से फूलों को तोड़ रही थी, तो एक डाल को झुकाकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने झुकाकर क्या, वो तो कृष्ण ने ही झुकाई थी, बड़ी हैवी डाल टहनी थी, राधा रानी ने टहनी को पकड़ा और फूल तोड़ने की कोशिश करी, भगवान कृष्ण ने क्या करा, अपना पैर हटा लिया, वेट हटा लिया अपना, वो टहनी ऊपर हो गई और राधा रानी जी लटक गई उसमें, बचाओ बचाओ। तो ये लीला का स्मरण करते हुए रूप गोस्वामी जी हंस पड़े। तो उसी समय वहां से एक ब्राह्मण जो थोड़ा शारीरिक रूप से इतना वो नहीं, थोड़ा कुरूप थे और ठीक नहीं थे, तो उन्होंने देखा, अरे मुझे दिख क्या, अरे अपने को वैष्णव समझते, मन में ले लिया कि अरे मुझे दिख ठीक नहीं है। और अचानक उनके थोड़ा सा हृदय में लेते ही रूप गोस्वामी जी को वो चिंतन बंद हो गया, लीला स्मरण बंद हो गया। तो बड़े परेशान हुए, अपने भ्राता सनातन गोस्वामी जी से पूछा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा तुमने कोई अपराध किया होगा इसलिए कारण है। आप सोच सकते हैं वैष्णव संप्रदाय में हम लोग जिन वैष्णव समाज में हैं कि हमें कभी इस प्रकार चिंतन हो पाएगा, ऑफेंसलेस लाइफ जीते हुए हमसे कोई दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, और हम भी कभी ऐसी लीला स्मरण कर रहे होंगे तो हमारा भी रुक जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां जिस प्रकार की स्थिति रहती है। जिस तरह वो बताते ना एक मर्तबान के अंदर वो क्या रखे थे, वो कौन सा जीव था, वो केकड़े बोलते क्या बोलते, और मर्तबान खुला रख दिया रात भर, लेकिन क्या हुआ सुबह तक सारे के सारे अंदर ही थे, मर गए बस। क्यों क्यों नहीं बाहर निकल पाए, क्योंकि एक जब जाता था तो दूसरा ट्रांसपोर्ट खींच लेता था, एक्सक्यूज मी पहले मैं, दूसरा खींचता था कहता आफ्टर मी, तीसरा जाता था वो कहते लेडीज फर्स्ट, वो कहते तू फर्स्ट कैसे मैं तो पूरी रात वो यही सब चलता रहा, एक भी नहीं पहुंच पाया। रूपाज जी ने इन वैकुंठों की तैयारी की है, ये वैकुंठा है, हमारे मंदिर वैकुंठ है, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कुंठा, भक्त लोग फील कर पाते हैं क्या भाई ऐसा होता है तो वास्तव में ये वैकुंठ है, अगर व्यक्ति सावधानी पूर्वक वैष्णव सदाचार का पालन करता हुआ भक्ति करता है। वैष्णव सदाचार का कोर्स करना या एक बार उसका मैनुअल पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज करना, टॉयलेट जाके स्नान करना ये आ गया, प्रसाद कैसे खाना ये मालूम पड़ गया, डांस करते वक्त क्या ध्यान रखना ये मालूम पड़ गया, लेकिन क्या पूरा का पूरा ग्रंथ याद रहता है या सारी डीलिंग्स याद रहती है? नहीं, कई बार केवल वैष्णव सदाचार का जो सर्टिफिकेट मिलता है खाली वो देखकर खुश नहीं होना, उसको जीवन में उतारना है। और इस प्रकार के कोर्सेज के, इस प्रकार के सीरीज या कैसे जो लेक्चर्स हर समय होते रहने चाहिए, क्योंकि जब जहां पर पानी स्टोर किया गया है मान लीजिए और जिस दिशा की तरफ तुम उस पानी को ले जाना चाहते हो, ये उस दिशा में तभी जाएगा जब वहां की जगह खुली होगी। और नुकसान क्या है, उस स्टोरेज पानी जो पानी स्टोर किया गया है वो खत्म कहां से हो सकता है अगर वहां कहीं लीकेज है या दूसरी छिद्र खुले हुए। तो वैष्णव अपराधों को रोकना अर्थात उन छिद्रों को सदैव बंद रखना। तो जब वो सभी छिद्र इस तरह के जहां से वेस्ट हो सकता पानी अगर बंद है तो नेचुरली वो पानी उस तरफ फ्लो करेगा जहां पर उसे जाना चाहिए। उसी प्रकार जब व्यक्ति वैष्णव अपराधों को, सदाचार को ठीक प्रकार से पालन करता है, कोई छिद्र ऐसा नहीं छोड़ता जहां से उसकी भक्ति का ह्रास हो, उसका नुकसान हो, वैष्णव अपराध करते हुए उसकी भक्ति का नुकसान हो, तो नेचुरली उसके बाद की गई चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, एसोसिएशन, ड्यूटी, वर्शिप, वट एवर इट इज, इस सारा का सारा उसकी चेतना को ठीक जगह लेके जाएगा, भक्ति को ठीक एडवांसमेंट में होगा भक्ति का। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति भक्ति लता बीज जैसे में प्राप्त होता है तो उसके साथ बहुत सारी खरपतवार उगती है, तो उन सब का समय समय पर क्या होना चाहिए, कटाई होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो भक्ति लता बीज को उगने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। पानी भी रोज डलेगा, सूर्य की रोशनी भी रोज पड़ेगी, तो अगर वो सब पे पड़ रहा है और कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है इस विषय की ओर तो नुकसान होगा। इसी कारण से देवताओं में और असुरों में सदैव युद्ध होते हैं। देवता और असुर नाम की पर्सनैलिटीज केवल ये इससे ऊपर के लोकों में हैं और वहां झगड़े हो रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। देवता और असुर हर जगह उपस्थित हैं, या फिर सही काम करने वाले और गलत काम करने वाले हर जगह उपस्थित हैं। मतों में भेद हर जगह मिलेगा, चाहे वो जानवर की योनि हो, चाहे वो पानी के अंदर के एक्वेटिक्स हो, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हो, देवतागण हो। जब तक लोग ठीक प्रकार से पूर्णतः शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं चलेगा, तब तक लोग इस भौतिक संसार में चाहे जिस भी अवस्था में हैं, हमेशा कलह कलेश रहेगा, वर्चस्व की लड़ाई रहेगी। यहां पर भी यही है, देवता लोग के पीछे सदैव पड़ रहते असुर लोग, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के नाम से, ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। ऐसा क्यों होता है फिर देवता लोग उस चीज को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी आसक्त हो चुके होते हैं, के बाद ये नहीं भी आसक्त होते तो फिर भगवान को स्वयं आना पड़ता है उनकी रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि होती है तो भगवान को रक्षा करने आना पड़ता है। देवताओं को मालूम होता है जब भी उनके ऊपर कष्ट आते हैं तो किसके पास जाना है, वो सरेंडर नहीं कर देते शुक्राचार्य को, ओके नाउ यू आर माई लॉर्ड, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, नहीं करते। तो इस प्रकार देवताओं का और असुरों का, भक्तों का और अभक्तों का, ये सदैव चलता रहता मामला। कब तक चलेगा, एक परिवार में तीन या चार ही लोग हैं और तीन चार लोग भी जो हैं आपस में क्या हैं, कुंठित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। क्या कारण है, क्यों पिता और माता दुखी हैं बच्चों की इन तरह की हरकतों से? क्योंकि जो पिता चाहते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं, वैसा नहीं हो रहा। बच्चों का ठीक प्रकार से चेतना नहीं है, क्योंकि समय बढ़ रहा है, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की इच्छाएं बढ़ रही हैं, इंद्र तृप्ति की अभिलाषा बढ़ रही है, तो हर व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है, वो चाहता है कि मेरे अकाउंट में मेरे नाम पर अधिक से अधिक हो। त्याग की भावना, प्रेम की भावना समाप्त होकर लोग जो हैं दुश्मन बन जाते हैं, कि घर में चाहे खून मिलता हो, ब्लड ग्रुप भी मिलता हो, एक ही माँ या पिता की संतान हो। दैट फैमिली हु प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, बाइबल में लिखा है कि जो परिवार के सदस्य लोग जिनका उद्देश्य एक है, इकट्ठे मिलकर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जीवन का उद्देश्य पूरी तरह क्लियर है, ऐसे लोग सदैव साथ रह सकते हैं। एक परिवार में तीन चार लोग साथ नहीं हैं तो प्रभुपाद जी कहते थे ये मंदिर वैकुंठ है, 50 हो चाहे 150 हो, जितनी भी संख्या हो लोगों की, लेकिन उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा। इसलिए संख्या में यहां पर लोग अधिक होने के बावजूद भी एक छत के नीचे रह पाते हैं, और जब नहीं रह पाते या जब कुछ गलतियां होती हैं तो उसके कारण क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं पर उन भक्तों के मन में भी क्या है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, फिर दो नंबर के काम शुरू हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य भूल गए, वो भूल गए कि कृष्ण क्या है, सर्वशक्तिमान है, कृष्ण है, ये भी भूल गए, ये विग्रह, हाँ विग्रह है, लेकिन कृष्ण साक्षात नहीं है। तो जब व्यक्ति अपने असुरक्षा की भावना उसके हृदय में आती है तो ये एक सबसे बड़ा कारण है उसकी नास्तिकता का, वो नास्तिक बन जाता है, उसकी माला या उसका जप करना, उसका सेवा करना, वो सब जो है इच्छाओं से पूर्ण रहता है, मिश्रित भक्ति बन जाती है असुरक्षा की भावना के बारे में। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के कारण अपने पद पूजा लाभ प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, फिर प्रतिकार करना पड़ता है, अर्थात जवाब देने पड़ते हैं, राजनीति की मदद लेनी पड़ती है, ईर्षा शुरू हो जाती है, द्वेष हो जाता है मन में, सुबह दोपहर शाम अब भगवान के चिंतन की जगह अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने उस पोस्ट को बनाए रखने के लिए, अपने उस अधिकार को बनाए रखने के लिए क्या होता है, चिंतन चलता है। और भक्तिमय जीवन आने के बाद भी वो व्यक्ति कुंठित रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। हो सकता है वो भी ये स्लोगन बोले, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कई कई बार कभी कभी उसके लिए सब कुछ बेकार है। फिर जो भक्ति, जो सेवा इत्यादि हो रही है, वो जल का और सूर्य की रोशनी का काम कर रहे हैं उसकी भक्ति के लिए, लेकिन साथ में जो उसने खतपतवार उगा ली है उसकी कटिंग कौन करेगा? इसलिए बोलते हैं भक्ति में व्यक्ति को अनाथ नहीं होना चाहिए, उसके सर पर कोई ना कोई खतपतवार काटने वाला या उसे बताने वाला सदैव होना चाहिए। सूत गोस्वामी जी भागवतम के पहले स्कंद में ग्लोरीफाई करते हुए बोल रहे हैं कि आप सब लोग इतने भाग्यशाली हो क्योंकि आप सबको निर्देशन देने वाला व्यक्ति उपस्थित है भक्ति में, कीर्तन कैसे किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है किसी भी भक्त के लिए। इस प्रकार के अनर्थ हर व्यक्ति के अंदर होंगे, लेकिन अगर उसको मालूम है कि मेरे सर पर कोई व्यक्ति है जिसको मैं जाकर पूछ सकता हूं कि प्रभु जी ये किस कारण हुआ, ये मेरे हृदय की वासनाएं क्यों कम नहीं हो रही, क्यों मेरे अंदर ये सब ऐसे ऐसे लोगों के प्रति ये सब हो रहा है, तो भक्त लोग उसकी रक्षा करते हैं। नहीं तो जब लोग इस प्रकार के संरक्षण से दूर होते हैं, खुश दिखते हैं एंटरटेनमेंट मनोरंजन के बेसिस पर, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सब कुछ है, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सब कुछ है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सच में भगवान के भक्तों से दूर है, कहीं प्रभुपाद जी को अपना सब कुछ मान के आगे बढ़ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति सच में सिंसियर है और सच में उसके पास कोई उसको संरक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो प्रभुपाद से मांगे कृपा, तो ये पुस्तकें ही उसका उद्धार करेंगे। हमने देखा इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर भी लोग प्रभुपाद जी के शेल्टर से दूर हुए। सकपट कृपा और निष्कपट कृपा के आधार पर जब हृदय के अंदर इतनी सारी इच्छाओं की गांठें पड़ जाती है और व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, इनसेंसिटिव हो जाता है वो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी करता है, चाहे वो सेवा के रूप में, जप के रूप में या अन्य दूसरी चीजों के रूप में, उसका मन नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सर्विस कि मैंने इतने घंटे कर लिए, मैंने इतना वो कर लिया, अब तो लोग भी मुझे जानने लगे, अब तो लोग भी कहते हैं, इस प्रकार के नंबर्स के द्वारा वो खुश होता है, एंटरटेनमेंट करके खुश होता है। लेकिन भक्ति की सूक्ष्मता अगर वो नहीं समझ पाया तो ये सारी चीजें होते हुए भी, इसलिए इतना आसान नहीं है। लिखा है शास्त्र में, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये, हजारों में कोई एक, और ऐसे एक जो इकट्ठे हुए हैं उनमें भी कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कहा गया, कोई नहीं जानता वासुदेव कृष्ण को। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर हृदय में असुरक्षा है, अभी भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी उसके अंदर काम क्रोध लोभ के प्रति उसका आकर्षण बना हुआ है, अर्थात उसी के उन्हीं गुणों को, उन्हीं अवगुणों को अपने गुण मान बैठा है, तो निश्चित रूप से वो परेशान रहेगा जिंदगी भर। और भक्ति, वैसे तो समय हमारे पास सबके पास कम है, 60-70 साल मैक्सिमम व्यक्ति जी पाता है, उसमें भी 30-40% लोगों का निकल चुका है, 40-50%, 60%। अब जितना भी बचा है वो भी है तो कम ही, लेकिन माया के कवरिंग के कारण बहुत लंबा है वो भी। और भक्ति में इस प्रकार की स्वतंत्रता या इस प्रकार का जो है स्वभाव बना लेना, वो लंबे समय तक नहीं चलता है। इतने ही समय में व्यक्ति को सब दिख जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल। तो इसलिए बहुत ही क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भक्ति के कुछ बहुत सीधे सिंपल नियम हैं। भक्त अगर उसका जीवन भर ध्यान रखे तो सदैव बच सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, जो कि यहां पर देवताओं के अंदर भी क्वालिटी देखी जा रही है वो वाली, और असुरों के अंदर भी देखी जा रही है, कि देवता लोग जब उनसे अपराध हुआ इंद्र से, तो इंद्र ने तुरंत माफी मांगी और पश्चाताप किया कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझ जैसा व्यक्ति घमंड में और इस ऐश्वर्य को भोगने के चक्कर में असलियत भूल गया कि मेरे गुरु खड़े, मैंने उनका अपमान कर दिया, मुझ जैसा बेकार व्यक्ति कोई नहीं, तुरंत पश्चाताप किया। उधर असुर, वो पूरी तरह दृढ़ थे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, शुक्राचार्य के, असुरों के गुरु, उन्होंने एकदम इंस्ट्रक्शन दी कि यही इस बढ़िया टाइम है, कर डालो अटैक। कोई मीटिंग बिठा के उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी आराम से देखते हैं, उसके बाद चलेंगे, ऐसा कोई कोई सिस्टम नहीं था। पूरी दृढ़ता थी नियमों को पालन करने में, और अटैक किया और देवताओं को मार भगाया, कोई हाथ किसी का टूटा, कोई पैर टूटा, जैसे भी। ये देवता लोग जो कि इतने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन गुरु की कृपा छीनने की वजह से सब। और फिर ब्रह्मा जी के पास जाने पर ब्रह्मा जी ने भी डांट लगाई और कहा ठीक है तुम विश्व रूप के पास जाओ, वैसे दानवों की तरफ भी रहते हैं, बट अब जाओ। और फिर वहां जाने के बाद रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनकी हेल्प की। तो यहां पर बता रहे हैं आज के श्लोक में कि जब युद्ध था तो उस स्थिति में भी जो है, अब क्योंकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन का पूरा तरह से पालन कर रहे थे इसलिए उनको कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन इधर नारायण कवच जो है पढ़ा गया, अब उससे जो है सुरक्षा प्रदान की गई देवताओं को, और असुरों का नुकसान होना शुरू हो गया। और रूपा जी प्रपट में लिख रहे हैं कि देवताओं का और असुरों का जो है सदैव चलता रहता है ये सब लड़ाई झगड़े। तो ये परिस्थितियां कहीं पर भी आ सकती हैं, हर जगह होंगी, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थितियों से होने के बावजूद भी इनसे आसक्त नहीं या इनसे पूरी तरह अनासक्त है, उसकी छवि पर, कौन सी छवि, किस चीज की छवि, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि असुर लोग भी खूब मुस्कुराते हैं जब जीतते हैं या हारते हैं कुछ भी, उसकी चेतना पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके हृदय में जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं तान तितिक्ष व भारत, सहन करना सीखो इसको, गर्मी सर्दी को और सुख और दुख को, तो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, धीरज सत्राम होती है। इस तरह के परिवर्तन को, इस प्रकार की सर्दी गर्मी और सुख दुख आने पर भी जीव जो है क्या होता है, विचलित नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति जल्दी लाने का प्रयास करना चाहिए। और जब व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में है तो निश्चित रूप से संभाव की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में आने का प्रयास करना चाहिए। एक भक्त को मालूम होना चाहिए कि उसको भक्ति करने के लिए क्या चीज चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भक्त जो उसको संरक्षण प्रदान करे, निर्देश प्रदान करे। दूसरा, भगवान के पवित्र नाम जपने की परिस्थितियां, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां। दूसरा, भागवतम इत्यादि श्रवण करने की अनुकूल परिस्थिति। तीसरा, भक्तों का संग करने की, है ना, कुछ सेवाएं और भक्ति में आगे बढ़ने की जो चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, ये परिस्थितियां सदैव उसको चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति में कर पाए। अगर कभी ऐसी जगहों पर इन चीजों को पालन करते हुए कोई दिक्कत आती है या कोई दिक्कत करता है, तब हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि भैया स्थिति जो है खराब है। और ये स्थिति प्रदान की गई है करने की, तो ये पृथ्वी पे सबसे अच्छी जगह है। इसलिए भूपा जी कहते वैकुंठ आए कि यहां पर ये सारी सहूलियतें दी जा रही हैं भक्तों को। इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं घट रही हैं, कोई और दिक्कत आ रही है, कुछ और परेशानी है, तो व्यक्ति को बिल्कुल भी अनासक्त भाव से अपने कार्य को करना चाहिए। दैट्स ऑल। कोई अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जैसे आसुरी वृत्ति हमने बताया होती है, तो ये इसलिए भी है क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षित नहीं, हर व्यक्ति का उद्देश्य एक नहीं और कभी भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक क्लासरूम में हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, अर्थात मार्क्स अलग लाता है, उद्देश्य तो सबका पास होना है, लेकिन अलग अलग बुद्धि के स्तर के अनुसार उसके नंबर आते हैं, है ना। उसी तरह हर जगह, हर समाज में इस तरह के लोग मिलेंगे जिनका, जिसमें से कुछ होंगे जो एकदम अच्छे मार्क्स लाना चाहेंगे, कुछ कहेंगे जो एवरेज पास भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पापा का बिजनेस है वो देख लूंगा। कुछ ऐसे होंगे जो कि पासिंग मार्क्स लाएंगे, छोड़ो क्या दिक्कत है, देखा जाएगा। कुछ फेल भी होंगे, तो इस तरह के भक्त हर जगह मिलेंगे और ऐसी परिस्थिति में बर्तन खड़केंगे। क्यों खड़केंगे? क्योंकि हर एक का उद्देश्य अलग है। रेड लाइट में, सॉरी, ट्रैफिक में जब हम चलते हैं तो हर गाड़ी का अलग स्पीड है, अलग कंफर्ट जोन है, और जाने की जगह भी वही है, तीन ही लाइन होती है। उसमें साइकिल से लेकर बस प्लेन और ट्रेन नहीं होती, बाकी सब होता है। टांगा भी होगा उसमें, गधे भी चल रहे होंगे भार उठा के, है ना, बैल भी उसमें है, खुली हुई गायें भी रास्ते में है, और फिर स्कूटर भी उसमें है, बाइक भी उसमें है, कारें भी सारी उसमें है, सस्ती और महंगी भी उसमें है, हर तरह का व्यक्ति उसमें है, है ना। तो छुटपुट छुटपुट घटनाएं घटेंगी, कहीं लगेगी कोई, आप सब चलते हैं सस्तों में आपको मालूम है, तो वो स्थिति सदैव रहेगी। लेकिन कोई छोड़ता नहीं है रास्ता में, छोड़, मैं कल से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, कल से मैं सड़क पर लाऊंगा नहीं गाड़ी, कल से मैं जाने ही बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो भक्ति तो सबने करनी है और यही एक माध्यम है व्यक्ति के शुद्धिकरण का या उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो इस प्रकार अगर हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएं और जो भी परिस्थितियां अवेलेबल हैं उन्हीं परिस्थितियों में बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और हर प्रकार की मेंटेलिटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उसके हृदय में या उसके मन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब पड़ जाता है तो वो नुकसान करता है, तो उतना समय उसने अपने को ब्रेक लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार देवता और असुरों में यही फर्क है कि असुर लोग प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है जीवन के लक्ष्य को लेकर, इसलिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए वो करना चाहते हैं। देवता लोग ट्रेंड हैं, नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि किसके संरक्षण में रहना है, तो इस प्रकार वो लोग ज्यादातर जीतते हैं। उसी तरह हम जब भी जिस भी परिस्थिति में हो, हमें प्रयास करना चाहिए ये अनुकूल परिस्थितियों में हमारी भक्ति एग्जीक्यूट कर सके हम लोग। बाकी परिस्थितियां टेम्परेरी हैं और ये आज है और कल नहीं रहेंगी, या आज नहीं है तो कल आएंगी, तो हर समय क्या होगा, परीक्षा होगी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम की जय। गौर कुमार।